अब हालात सही नहीं आते, तंग है, मुश्किल है। अगली ही आयतों में आप देखिए कि आपके मेरे लिए खूबसूरत पैगाम है कि याद रखो हालात तो ऐसे ही रहेंगे, कभी नहीं इससे अच्छे होंगे। हालात अच्छे तब होते हैं जब हालत अच्छी होती है, और हालत अच्छी तब होती है जब जिहादे कबीर कुरान के जरिए होता है। आज उम्मत के बिगाड़ की वजह कुरान से दूरी है, हमने पता नहीं इसकी वजह किस किस को समझा। तो अगली आयतों में देखिएगा, आयत 53, वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन व हाज़ा मिल्हुन उजाज, और वही है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, एक लजीज और शीरी, दूसरा तल्ख और शोर, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल है, एक रुकावट है जो उन्हें गुड़मुट होने से रोके हुए है। यानी क्या पता चला, दो मुख्तलिफ चीजें। आप देखिए मीठे और नमकीन पानी को इकट्ठा करें तो यकीन में आता है कि ये दोनों मिलेंगे नहीं, दुनिया में अल्लाह ने करके दिखाया। असल में ये पिछली आयत ही के ऊपर बात है कि जिंदगी में हर तरह के लोग तुम्हें मिलेंगे, कुछ मीठे कुछ कड़वे, कुछ ऐसे होंगे कि जो जिनको देखकर तुम्हें लगेगा जस्ट बस ये मैं ही हूं, और कुछ को देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे ये बंदा भी है कि नहीं है। अल्लाह की ये दुनिया तजादात का मजमू है। अगली आयत पढ़ेंगे तो फिर ये बात आप बोलेंगे जो मैंने अभी बोली, और वो क्या, और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर इसे नसब और ससुराल के दो अलग सिलसिले चलाए, तेरा रब बड़ा ही कुदरत वाला है। यहाँ पहले तो आप लोग सिहरा को हाईलाइट कीजिए, सिहरा ससुराल। देखिए अल्लाह ने कुरान में भी ससुराल का जिक्र कर दिया, लोग कहेंगे ये यहाँ भी आ गए, उनसे जान छुड़ाकर तुम पता नहीं कहाँ गए थे। खैर ये तो मैंने प्यार से बात की है। देखिए जिंदगी में ससुराल में निभाव करना है या मुआशरे के अंदर कुरान लेकर चलना है, ये क्राइटेरिया ने इसको बस समझ लें कि ये दुनिया 100% आपकी मेरी मर्जी की नहीं होगी। हालात हमेशा 100% पे नहीं आएंगे, ससुराल में निभा करना है जैसे हैं, आपको रहना पड़ेगा, आप अच्छे बन जाएं, आप उनके साथ आरई तमन इतखज़ इलाहहू के ऊपर चोट डालें, आप अपनी अना छोड़ दें, आप अपने अंदर आजजी लाएं, अपनी ख्वाहिशें कम कर दें, कम सोएं सास खुश होगी आपसे, कम खर्च करें शौहर आपसे खुश होगा, अपनी चीज़ें नंदों से शेयर करें नंदे खुश होंगी, नफ्स पे चोट डाल के रिश्ते निभते हैं, दीन के भी और दुनिया के भी। जिन घरों से ये पैगाम जाते हैं आज भी उनकी बच्चियां बड़ी खुश हैं, और जो सास गले की भांस का गाना सुन के जाती हैं वो कभी भी वहां खुश नहीं रहती। याद रखिए इंसानों के अंदर मुझे आपको बेहतरीन तरीके से लेना है। कल भी किसी से एक छोटी सी बात शेयर की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, एक बच्चा किसी के घर में पैदा क्या हो गया है, अल्लाह की पनाह। माँ उठाए तो बाप पकड़ लेता है, बाप उठाए तो दादा, दादा उठा ले तो दादी, दादी उठा ले तो पुप्पी दूसरी, और वो सोते को उठा रहे हैं और उधर उठा रहे हैं, भाई क्या हो गया, बेबी घर में आ गया। तो मैंने जब ये मंजर देखा तो मैंने कहा, मेरे पास जो भी थे मैंने कहा, कल पढ़ा के भी सूरत नूरी गई थी, मैंने कहा जिना से पैदा होने वाले बच्चे को तो ये सब नसीब ही नहीं होता, उस गरीब को तो ये भी नहीं पता मेरा बाप कौन है, दादी का कौन बताएगा। इस्लाम ने इतना खूबसूरत सिस्टम आपको मुझे दिया है, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे हैं, असल बात क्या है कि हम फितरत के तकाजों पे जिए, इस दुनिया को आज हमने दीन दिया होता और हमारे घरों में सुकून और इत्मीनान होता। ये ख्वाहिशों की मोहब्बत ने ना घरों में सुकून छोड़ा है ना बाहर की दुनिया में सुकून छोड़ा है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम अपनी और दूसरों की इसलाह का जरिया बन जाएं। इस सलाह को छोड़कर लोग उनको पूछ रहे हैं जो ना इनको नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान, और ऊपर से मजीद ये के काफिर अपने रब के मुकाबले में हर बागी का मददगार बना हुआ है। ऐ नबी तुमको तो हमने बस एक बशारत देने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, इनसे कह दो मैं इस काम पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत बस यही है कि जिसका जी चाहे अपने रब का रास्ता अख्तियार करे। कितनी प्यारी उजरत है, किसी ने पे लेनी है ना दीन का काम करने की तो ये ले, और वो क्या है, हम आपको क्या दें, हम आपकी क्या खिदमत करें, ये खिदमत कीजिए कि जो बातें सुन रहे हो उस पर अमल कर लो, तुम मेरे लिए सदका जारिया बन जाओगे। ये पैगाम है कि अपने रब का रास्ता इख्तियार करो, अगर तुमने अमल कोई नहीं करना तो कहने वाले को तुमने जो भी दे दिया उसकी कोई कदर नहीं है। तो सबसे खूबसूरत तोहफा जो अपने उस्ताद को कोई दे सकता है ना, वो अच्छा शागिर्द बन के दे सकता है, अमल की सूरत में दे सकता है। और नबी इसीलिए बेनियाज थे दुनिया की चीज़ों से कि उनको चाहिए नहीं थी, वो तो कहते थे लोगों मेरी बात सुनो, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तुम फला पा जाओगे। वत्तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही। ऐ नबी, जात पर भरोसा रखो जो जिंदा है, जो कभी नहीं मरने वाला, इसकी हम के साथ इसकी तस्बीह करो। अपने बंदों के गुनाहों से बस इसी का बाखबर होना काफ़ी है। यहाँ नोट कर लें, कभी दूसरों को अपने गुनाह ना सुनाएं। अगर पिछली जिंदगी में कोई गुनाह हो गया, अल्लाह ने पर्दा डाल दिया, आप भी पर्दा डाल दें। मत जा जा के लोगों को सुनाए ये हो गया वो हो गया। अगर दिल पे गिल्ट है, माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। वो जिसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान को और इन सारी चीज़ों को बनाकर रख दिया जो ज़मीन व आसमान के दरमियान है, फिर आप ही अर्श पर जलवा फरमा हुआ रहमान, और उसकी शान तो बस किसी जानने वाले से पूछो। वो कहते हैं हीरे की कदर जौहरी जानता है, रहमान की कदर वही करेगा जिसने वाकई दुनिया में रहमान की कायनात को देखा, इस पे गौर किया। वैज़ा क़ीला लहुम उस्जुदु लिर्रहमान, इन लोगों से जब कहा जाता है कि इस रहमान को सजदा करो तो कहते हैं रहमान क्या होता है, क्या बस जिसे तू कह दे हाँ उसी को हम सजदा करते फिरें। देखिए रऊनत तकब्बुर, ये दावत इनकी नफरत में उल्टा और इजाफा कर देती है। तबारक अल्लज़ी जअला फिस्समाई बुरूजा, पाक है वो ज़ात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें एक चिराग और एक चमकता हुआ चांद रोशन किया। वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानशीन बनाया, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्र गुजार होना चाहे। यहाँ से अब आखिरी रुकू है सूरत का, इबादुर्रहमान के नाम पर, और हमारी इस पारे की काबिल तकलीद शख्सियत भी इबादुर्रहमान है। अगर आप 1 2 3 करके इनकी खूबियों को जमा करते जाएंगे तो इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी सामने आएगी कि खुद भी दिल चाहेगा कि अल्लाह हमें ऐसा बना दे और अपने प्यारों के लिए भी। आइए पढ़ते हैं, और इस सोच के साथ कि इंशाल्लाह हमने ऐसा बनना भी है। हैं तो सारे ही अल्लाह के बंदे, लेकिन अल्लाह ताला कुछ बंदों को अपना ख़ास बंदा क्यों कहता है? ये बिल्कुल ऐसी है जैसे माँ प्यार से कहती है मेरा बच्चा यही है, क्या मतलब कि असल मेरी बात यही मानता है। तो फरमाया वही बादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, रहमान के असली बंदे वो हैं जो जमीन पर नरम चाल चलते हैं। ये क्या बात है, चाल चलन से बात शुरू की जी, असल चाल बंदे के अंदर का इजहार होती है। चलिए खुद से पूछते हैं मैं कैसे चलती हूं। हर एक खुद भी देखे अपनी चाल और किसी बेतकल्लुफ दोस्त से भी कहे मेरे चलने के ऊपर तो जरा गौर करो। देखिए एक उर्दू में हम लफ्ज़ बोलते हैं चाल चलन, करेक्टर, उस पर कोई तनकीद करे तो लोग माइंड करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की चाल कैसी थी? यूं चलते थे, तेज, ऐसा नहीं चलते थे मरियल मरियल टिप। हम चलने लगे ऐसे लगता हमसे ज़्यादा बीमार कोई नहीं, और जब हम दुनिया के अपने मज़े मज़े के काम कर रहे होते हैं तो हम भाग रहे होते हैं। तो चाल सही होनी चाहिए, तकबर नहीं होना चाहिए, लेकिन एतमाद वाली चाल। आप ऐसे चलते थे जैसे पहाड़ से नीचे आ रहे, यूं चौड़े सीने के साथ यूं, और कुछ लोग आप देखिए कंधे उचकाते हुए, कुछ पीछे को सीना खोल कर आगे हाथ रखे हुए, ये पसंदीदा तरीका नहीं है। दूसरी बात, और जाहिल इनके मुंह आए तो कह देते हैं तुमको सलाम, बहसे नहीं करते। लिख लें अपने लिए दूसरा पॉइंट, बहस नहीं करनी। जब कोई दीन की किसी बात पर भी बात करेगा ना, तो मैं यही कहूंगी उसको कि नहीं नहीं मैं बहस में नहीं पड़ती, तुम उधर चले जाओ। होना नरम चाल, ज़मीन पे पांव रखते हैं तो ऐसे नहीं रखते कि ज़मीन को भी सख्ती में डाल दें, और इनके साथ मामला करना भी आसान होता है और बहसों में नहीं पड़ते। जो अपने रब के हजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं। सवाल, मेरी रातें किस कैफियत में गुजरती हैं? जो दुआएं करते हैं ऐ हमारे रब जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले, इसका साहब तो जान का लागू है, वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मुकाम है। फिर क्वेश्चन, मेरी रातों की दुआएं क्या हैं? हमें रात को जागने का मौका भी मिल जाए तो फिर बेटों के लिए रोजी और रिश्ते और रिस्क ही मांग लेते हैं, वो भी मांगें लेकिन इससे गाफिल ना रहें। वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मुकाम है। फिर अगली सिफत, जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि इनका खर्च दोनों इंतहाओं के दरमियान एतदाल पर कायम रहता है। इस पे भी गौर व फिक्र, मैं इसराफ तो नहीं करती, तबजीर तो नहीं करती, बेकार चीज़ें तो नहीं खरीदती, सिर्फ शौक की खातर आरई तमन तख़ इलाहू के तहत सिर्फ ख्वाहिशात के लिए तो नहीं खर्च करती। इस्तेमाल के लिए लीजिए, ज़रूरत के लिए लीजिए, तोहफे देने के लिए लीजिए, इससे एक्स्ट्रा अगर कोई चीज लेते हैं तो वो आपकी नहीं है, खामखा आपने किसी की चीज लेकर अपने पल्ले में डाल दी। फिर अगली बात, वल्लज़ीना ला यदूना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते। इख्तसाब, कोई जाहरी बात नहीं, अगर माबूद है तो उसको मिटाने की जरूरत है। फिर अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते और न जिना के मुर्तकिब होते हैं। याद रखिए कि जिना का फेल सिर्फ शर्मगाह का फेल नहीं है। बुखारी की रिवायत है, लईनान तज़नियान व जिना हुमन नस्र, आंखें भी जिना करती हैं और आंखों का जिना गैर महरम को शहवत भरी निगाहों से देखना है। लिटरली औरत मर्द को देख सकती है, मर्द भी औरत को देख सकता है। काम के लिए, जरूरत के लिए झुका कर नजर, सिर्फ एक काम की हद तक, लेकिन मोहब्बत से देखना, हाय फैन बनना, उनकी तस्वीरें लगाना, जरा सा सोचिए इसको। जवान बच्चियों के घरों में पोस्टर हों या गुलकारों या अदाकारों के, कहीं ये रास्ता कहीं और तो नहीं ले जाता। ये काम जो कोई करे वो अपने गुनाह का बदला पाएगा, क्यामत के रोज इनको दोहरा अजाब दिया जाएगा और इसी में वो हमेशा जिल्लत के साथ पड़ा रहेगा। अब क्या करें, पिछले गुनाह याद आ गए का कोई बात नहीं, इल्ला मगर ये कि जो इन गुनाहों के बाद तौबा कर चुका और ईमान लाकर अमल सालेह करने लगा हो। ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। अल्लाह अकबर, तौबा कीजिए, पिछले गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे। हदीस में आता है कि क्यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे का नामे अमाल खोलेगा तो उसमें गुनाह होंगे, तो उसको देखकर परेशान होगा। जब उसके गुनाह सारे सामने आ जाएंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे, जाओ इसके हर गुनाह को नेकी में बदल दो। इस बात को वो सुन के कहेगा, अल्लाह मेरे तो वो बड़े बड़े गुनाह भी थे, वो क्यों नहीं नजर आ रहे। समझ आई? यानी कि आज नेकियों में ढल रहे हैं तो फिर मुझे वो भी दे और मैं उसके बदले में नेकियां लूं। क्या पता चला कि तौबा जुबान का नहीं हाथ पांव का फेल है। आप अमल से तौबा करें, पिछले गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे और वो बड़ा गफूर रहीम है। जो शख्स तौबा करके नेक अमली इख्तियार करता है वो तो अल्लाह की तरफ पलट आता है, जैसा कि पलटने का हक है। और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते। ये क्या होता है? अगला हिस्सा इसको वाजे करता है, और किसी लफ्ज चीज पर इनका गुजर हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुजर जाते हैं। एक होते खुद झूठ बोलना, एक होता है झूठ का गवाह। वो कैसे, आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है और आप खड़े गवाह बन गए। किसी की बात सुनाती हूँ अमल के लिए आपको फायदा देगी, कहा मैं आज के बाद किसी शादी पे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कहा अल्लाह ने कहा है। क्या कहा है? कि वो झूठ के गवाह नहीं बनते। कहा वहां तो लोग इतना खाना जाया कर रहे होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ, लोग इतनी बेपर्दगी करते हैं और मैं देख रहा हूँ, और बाकी बातें आप खुद समझ जाए। तो बस दफा कहीं सिर्फ आपकी मौजूदगी भी आपको झूठ का गवाह बना देती है। अल्लाह हमें लगवियात से शरीफाना तरीके से गुजार दे। जिन्हें अगर इनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो इस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते जो दुआएं मांगा करते हैं। अब ये है आपकी दुआ, खूबसूरत दुआ इस बारे की, रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। ऐ रब, हमें हम अपनी बीवियों और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे और हमको परहेजगार लोगों का इमाम बना दे। औलाद आंखों की ठंडक कब बनती है? जब वो नेकियां करती है। आप देखिए, कभी आपने एक लफ्ज सुना होगा, खुशी के आंसू। खुशियों में आंसू आते हैं ना, तो यहाँ आंखों की ठंडक है कि अल्लाह हमारे बच्चे और हमारे शौहर वो नेकियां करें जिनको देख कर हमारी आंखों से खुशी के मारे आंसू निकल जाए। तो जब आंसू निकलेंगे तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। दिल से अपनी औलादों के लिए दुआ कीजिए, तड़प के मांगिए। देखिए, बच्चे दूध नहीं पीते ना, बहाने बहाने पिलाते हैं, आइसक्रीम ही खा लो, चॉकलेट डाल दो, मिल्क शेक बना दो। तो हिदायत नहीं पी रहे ना बच्चे, तो उसका मिल्क शेक बना के पिलाएं, प्यार से, मोहब्बत से, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, तरीके से रखें उनको अपने साथ ताकि उनको आपसे मोहब्बत हो। और याद रखिए कि जितना ज्यादा आप इसमें अपना इंटरेस्ट शो करेंगे, इंशाल्लाह ये काम आसानी से होगा। ये है वो लोग जो अपने सब्र का फल मंजिले बुलंद की शक्ल में पाएंगे। अल्लाह हमें भी ऐसी जगह में शामिल करते हैं। आदाबो तस्लीमात से इनका इस्तकबाल होगा, वो वहां हमेशा हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा है वो मुस्तकर और मुकाम। और आखिर में फिर डांट, ऐ नबी लोगों से कह दो, मेरे रब को तुम्हारी क्या हाजत पड़ी है? जरा से इधर रुकिए, मेरे रब को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी है? यानी तुम में से कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम इसको ना पुकारो, अब के तुमने झुटला दिया है, अन करीब वो सजा पाओगे कि जान छुड़ानी मुहाल होगी। क्या पता चला कि जो तकब्बुर के मारे दुआ भी नहीं मांगता ना, तो अल्लाह उससे बेनियाज है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको इबादुर रहमान में शामिल कर ले। तिलावत सुनते हैं आखिरी आयतों की।
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا الذين يقول الذين يقولون الذين يقولون ربنا ربنا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا 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 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً.